ஹரே கிருஷ்ணா. ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, கோபிஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, கோபிஜனவல்லபா கிரிவரதாரி, யசோதானந்தன வ்ரஜ ஜனரஞ்சன, யசோதானந்தன வ்ரஜ ஜனரஞ்சன, யமுனா தீரவனசாரி, யமுனா தீரவனசாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஜெய ராதா மாதவ குஞ்ச பிஹாரி, ஹரி கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி, ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி, ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி, ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி ஹரி கிருஷ்ணா ஹரி கிருஷ்ணா Hari Rama Hari Rama 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 Hari Hari
Bolo bolo sab log bolo
Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Hari Hari Radha, Giridhari Radhe Jaya Jagannatha, Jagannatha Balabhima Jai Subhadra Jitai Gaur Hari Gaur Hari bol, Hari bol, bol Hari bol. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Jaya Prabhupad.
Tai Gaur Premanande Shri Shri Radha Giridhari Bhagavan ki Shri Shri Jagannath Baladev Subhadramai ki Shri Shri Gaunithai ki Srila Prabhupada ki Grantharaj Srimad Bhagavatam ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jaya Mudiraye Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Ruttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
तो आज हम श्रीमद् भागवत के कहां से आवाज है श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय एक श्लोक 20 भगवान श्री कृष्ण का अवतार परिचय तत्र गत्वा जगन्नाथम देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहितः तत्र गत्वा जगन्नाथम् देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपातस्ते समाहितः तत्र गत्वा जगन्नाथम् देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपस्तते समाहितः पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपतस्ते समाहितः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन समाहितः माताजी तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं पुरुषं पुरुषसूक्तेन उपस्तस्ते समाहितः तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं हरे कृष्ण। तत्र वहां शिव सागर के तट पर गत्वा जाकर जगन्नाथम समग्र ब्रह्मांड के स्वामी को देवदेवम सारे देवताओं के परमेश्वर को वृषाकपिम परम पुरुष विष्णु को जो हर एक का पालन करने वाले तथा सबके कष्टों को दूर करने वाले हैं पुरुषम परम पुरुष को पुरुष सुक्तेना पुरुष सुक्त नामक वैदिक मंत्र से उपतस्थे पूजा किया समाहितः पूर्ण मनोयोग से अनुवाद। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर सारे देवताओं ने समस्त ब्रह्मांड के स्वामी समस्त देवताओं के परम ईश तथा हरेक का पालन करने वाले और उनके दुखों को दूर करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। उन्होंने बड़े ही मनोयोग से पुरुष सुक्त नामक वैदिक मंत्रों का पाठ किया। उसके द्वारा क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु की पूजा की। जय हो। सारे देवता तथा भगवान ब्रह्मा भगवान शिव भगवान इंद्र चंद्र सूर्य भगवान सूर्य भगवान के अधीन है। देवताओं के अतिरिक्त मानव समाज में भी अनेक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो विविध व्यापारों या प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं, किंतु भगवान विष्णु तो देवताओं को भी ईश्वर है, परमेश्वर, वे परम पुरुष परमात्मा हैं। जैसा कि ब्रह्मा संहिता में पुष्टि हुई है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, गोविंद नाम से विख्यात कृष्ण परम नियंता है। उनका शरीर सत चित आनंद तथा आनंद से युक्त है, न तो कोई भगवान के तुल्य है न ही उनसे बढ़कर है। इसीलिए यहां पर जगन्नाथ देव देव वृषाकपि तथा पुरुष जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है उनका वर्णन करने के लिए। भगवान विष्णु की श्रेष्ठता की पुष्टि भगवत गीता में 10वें अध्याय में 12वें श्लोक में अर्जुन के निम्नलिखित कथन से होती है। परब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। आप परब्रह्म हैं, परब्राह्म हैं, शुद्धिकर्ता, परम सत्य तथा नित्य दैवो दैवी पुरुष हैं। आप आदि भगवान हैं, दिव्य और शाश्वत, अजन्मा हैं और सर्वव्यापक सौंदर्य भी है। कृष्ण आदि पुरुष हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। विष्णु भगवान कृष्ण के स्व अंश हैं और सारे विष्णु तत्व परमेश्वर तथा देव देव हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं तदाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गुरु यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनपारिणं। श्रीमद्भागवत का बहुत ही सुंदर जो भाग है वो प्रारंभ हो रहा है। श्रीमद्भागवत तो बहुत सुंदर शुरू से ही है, हर एक उसका शब्द, हर एक श्लोक, हर एक वाणी, हर एक उपदेश, हर एक कथा सर्वश्रेष्ठतम है, अमलम पुराणम है। इसमें कोई किसी प्रकार का दोष नहीं है, गुणों का नहीं है, किसी प्रकार का कर्मकांड, ज्ञानकांड, योगकांड, अष्टांग, किसी प्रकार का दोष इसमें नहीं है। फिर भी जैसे भगवान का देह जो होता है वो नखशिखांत दिव्य होता है, लेकिन फिर भी मुख कमल तो मुख कमल ही है, जिसका स्थान उसमें भी, उस दिव्यता में भी सर्व दिव्य होता है। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का साक्षात रूप है, साक्षात विग्रह है, और भगवान को, भगवान जब अंतर्धान हुए सब भगवान की रानियां व्याकुल हुई, तो भगवान की रानियों ने कुसुम सरोवर गोवर्धन के तलैटी में बैठकर उद्धव जी के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत का कथा सुना 30 दिन तक। और जैसे ही उन्होंने श्रीमद्, जैसे वो जब आई वहां पर, तो वो बड़ी दुखी थी, बड़े विरह में थी, बड़े कष्ट में थी, पीड़ा में थी, भगवान के चले जाने पर बड़ी दुखी थी, व्याकुल थी, विलाप कर रही थी। विलाप करते हुए भी ब्रज में आई, भगवान की ऐसी इच्छा थी कि उनको ब्रज में लाया जाए मेरे जाने के पश्चात। तो जब कथा शुरू हुई तो विलाप में थी, कथा आरंभ हुई तत्क्षण उनका विलाप समाप्त हो गया, तत्क्षण उनका कष्ट समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि जिनके लिए वो विलाप कर रही थी उनका क्षण, उनका संग उनको तत्क्षण प्राप्त हुआ। श्रीमद् भागवत का कथन शुरू होते ही उन्होंने भगवान के विग्रह का, भगवान के साक्षात वपू का अनुभव किया, इसलिए वो दुख से तुरंत मुक्त हो गए। और दुख से तुरंत मुक्त होने के पश्चात तुरंत भगवान के सानिध्य का उन्होंने अनुभव किया। जैसे ही दशम स्कंध का वर्णन आरंभ हुआ, प्रभुपाद जी लिखते हैं उसकी तीन प्रकार की लीला है। एक है ब्रज लीला, वृंदावन लीला, एक है मथुरा लीला और एक है द्वारका लीला। ऐसे पुण्यासी कथाएं उसमें प्रस्तुत है। तो जैसे ही दशम स्कंध आरंभ हुआ तो भगवान की पत्नियों ने अपने आप के दिव्य सिद्ध देह का दर्शन किया, जैसे वो गौलोक में थी, अपने ही आप के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। और जब 12वें स्कंध का वर्णन समाप्त हो गया तो वो उस दिव्य रूप में विलीन हो गई, मतलब उन्होंने स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर ली। वो भगवत धाम जिस रूप में रहा करती थी, नित्य सिद्ध जीव के रूप में, वो स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया श्रीमद् भागवत के श्रवण के माध्यम से। दशम स्कंध जो है ये साक्षात भगवान का मुख कमल है और प्रत्यक्ष कृष्ण चरित्र है। और इसकी क्या महिमा है, तव कथामृतम तप्त जीवनम। सब लोग हम इस दुनिया में पीड़ित हैं, कोई किसी प्रिय व्यक्ति को खो बैठा हुआ है, कोई धन को खोया हुआ है, किसी का स्वास्थ्य खोया हुआ है, किसी के मन की शांति खोई हुई है, किसी को किसी जानवर से पीड़ा है या सर्प से पीड़ा है, मच्छर से पीड़ा है, उसको रोग हो गया है, जानलेवा रोग हो गया है, किसी को पति पत्नी के बीच में मतभेद है, किसी का परिवार में मतभेद है, किसी के अनंत प्रकार की अनंत समस्याएं, हाँ कोई अंत नहीं है उसका। ये सबसे इस जीवन में सब लोग जो बद्ध जीव हैं भगवान को खोकर इस जीवन में, इस पृथ्वी पर, इस भौतिक जगत में शरीर धारण करके आए हैं, वो सब दुख भोग रहे हैं, जल रहे हैं, तड़प रहे हैं। तो वो भी कहती है तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कल्मशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि भ्रुवंती ते भूरि दातनः। जितने भी कलमश हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी पीड़ाएं हैं जो हमारे अनंत पूर्व कर्मों के द्वारा हमको भोगने पड़ते हैं, वो सारे कलमश कृष्ण चरित्र के सुनने से नष्ट हो जाते हैं। जितनी पीड़ाएं हैं, जितनी तड़प है हमारे मन में, तृष्णा है, कुछ खोया हुआ है, कुछ नहीं है, वो पाने की इच्छा है, दो ही प्रकार के दुख होते हैं जो अनंत दुखों में विभाजित हैं। एक है जो है वो खो गया है और दूसरा वो दुख है जो नहीं है उसको प्राप्त करना है, शोक और कांक्षा। शोक यानी जो चीज हमसे खो गई है वो हमको चाहिए इसलिए हम रो रहे हैं, और कांक्षा यानी जो हमारे पास नहीं है वो हमको चाहिए, वो नहीं मिल रहा है इसलिए हम रो रहे हैं। आप सोच के देखो, हमारे पास केवल दो दुख है, और जो कृष्ण चरित्र का श्रवण करता है, कृष्ण नाम का आश्रय ग्रहण करता है, कृष्ण के धाम का संग करता है, कृष्ण के भक्तों के साथ संग करता है, वो शोक से मुक्त हो जाता है और वो कांक्षाओं से मुक्त हो जाता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि बहुत सुंदर ये यहाँ पर जो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं इन श्लोकों में, बहुत सुंदर लिखा है उन्होंने कि विश्व के जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, जो द्वेष करते हैं, वो किसी को खुश देखना नहीं चाहते क्योंकि वो खुद बहुत दुखी हैं, और किसी को खुश देखेंगे तो बहुत कष्ट होता है उनको कि भला ये हमसे, हम दुखी हैं, ये दुखी कैसे नहीं है, और हम सुखी नहीं है, ये सुखी कैसे हैं। तो इनके प्रश्न होता है, तो कहते हैं कि जब ऐसे लोग भगवान के भक्तों को देखते हैं तो उनको बड़ा दुख होता है उनको देखकर कि ये हमारे से सुखी कैसे। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने भी आदमी दुखी होंगे अगर वो कृष्ण भावना, कृष्ण चरित्र, कृष्ण नाम का सहारा लेते हैं तो वो अपने आप को भी आश्चर्यचकित प्राप्त करते हैं। दे ऑल्सो फील वेरी सरप्राइज लुकिंग एट देम कि अरे मेरे मन में इतनी कामनाएं थी, कहाँ गई सब कामनाएं, अभी तो कुछ इच्छा लगती नहीं है, पहले बहुत सारा एम्बिशन था, महत्वाकांक्षाएं थी, अभी दिखाई नहीं पड़ती है, पहले बहुत सारा क्रोध हुआ करता था इन इन चीजों पर प्राप्त नहीं होने पर, काफी दुख हुआ करता था, अभी नहीं हो रहा है। क्योंकि कृष्ण भावना जो है वो सभी जीवों को अपनी पीड़ाओं से, यातना से, विलापों से मुक्त कर देती, और उनको इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि विश्व जो है वो तो दुखों का सागर ही है। माम उपेत्य तु कौन्तेय दुखालयम अशाश्वतम, सब जगह दुख भरा हुआ है और ये दुख समाप्त होने वाला नहीं है क्योंकि इसी के लिए इसको बनाया गया है। तो जब हम कहते हैं कि दुख समाप्त हो जाते हैं, मतलब दुखों का बाहरी हिस्सा वैसे रहता है, उन दुखों का परिणाम उस भक्त पर नहीं होता है जिसने कृष्ण का सहारा लिया है। तो ये कैसे मुमकिन है, दुखों को होते हुए भी दुखों का परिणाम हमारे ऊपर न होना, ये कैसे हो सकता है? जब हम दुखों के स्तर से ऊपर उठ जाते हैं, दिव्य स्तर पर उठ जाते हैं, तो उस स्तर पर केवल आनंद है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, तत्क्षण हम शरीर मन बुद्धि अहंकार इन सारे स्तरों को पार करते हुए आत्मा के स्तर पर अपने आप को प्राप्त करते हैं। और आत्मा के स्तर पे केवल आनंद है, इसलिए आत्मा के स्तर पे जो आनंद है उसका तत्क्षण अनुभव करते हैं। और सारे दुख कहाँ हैं? सारे दुख शरीर के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है और अहंकार के स्तर पर है। अहंकार का मतलब क्या है कि मैं ये हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं पृथ्वी का आदमी हूं, बुद्धिमान हूं, मैं अमीर हूं, मैं सुंदर हूं, पढ़ा लिखा हूं, ये अहंकार है। और इस स्तर पे और बुद्धि के स्तर पे और भावनाओं के मतलब मन के स्तर पे और शरीर के स्तर पे, यहीं पर केवल विलाप और दुख है और आत्मा के स्तर पर कोई दुख नहीं है। तो भगवत भावना, भगवत कथा, भगवत नाम क्या करता है? वो हमको इन स्तरों से हटाकर आत्मा के स्तर पर स्थिर कर देता है। अगर हम उस स्तर से फिर नीचे आए फिर दुखी हो जाते हैं, उससे उठकर ऊपर गए तो फिर तुरंत मुक्त हो जाते हैं, दुख वही रहता है, कैंसर, कष्ट, हम प्रिय व्यक्ति का देहांत और शरीर की पीड़ा और किसी व्यक्ति से पीड़ा, निसर्ग का, प्रकृति का प्रकोप, ये सब वही रहता है, वो बदलता नहीं है। लेकिन हम उसके ऊपर उठ जाते हैं, उठ सकते हैं। इस दुनिया के दुखों का मिटाने का और कोई उपाय नहीं है, इस दुनिया का दुख जो है कोई मिटा नहीं सकता है क्योंकि बनाया इसी के लिए गया है। दैवी येषि गुणमयी मम माया दुरात्या, क्योंकि कृष्ण की जो दैवी शक्ति है इसका सब काम है ये, वो कृष्ण जैसी प्रभावशाली है, उसके द्वारा, भगवान के द्वारा नियोजित जो यहाँ की योजनाएं हैं उसको कोई टाल नहीं सकता है, कोई धीरो नहीं कर सकता है उसे। केवल हम उससे ऊपर उठने का प्रयास कर सकते हैं, यही एक रास्ता है। ऊपर कहते हैं ट्रांजेंड द मटेरियल प्लेटफॉर्म, भौतिक स्तर जो है उसको लांग लो। कहते हैं बहुत मुश्किल है, वो कैसे लांग सकते हैं उसको, लेकिन कहते हैं जब भगवान की भावना का, भगवान के नाम का, भगवान के भक्तों का और भगवान की कथा का, भगवान के धाम का जब आश्रय हम लेते हैं तो बहुत ही आसानी से इन दुरत्यया माने कि बहुत कष्टमय जो स्तर हैं शरीर के, मन के, बुद्धि के, आत्मा के, इनको आसानी से लांग करके हम आत्मा के स्तर पर अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं। अपने बल पर नहीं, भगवत नाम के बल पर, अपने बल पर नहीं, भगवत कथा के बल पर। अपने आप में वो कहते हैं आमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोली धाये तव पाचे पाचे, हम तो अपने आप में बहुत कमजोर हैं क्योंकि हम अणुमात्र हैं, लेकिन हम सहारा जिसका ले रहे हैं वो बहुत बलवान है। उसमें बहुत सुंदर बात क्या है, भगवान तो बहुत दूर है, उनका सहारा लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन उन्होंने हमारे सहारा लेने योग्य कुछ वस्तुएं यहां भेज दी हैं, वो है उनका नाम, वो है उनका धाम, वो है उनकी लीला और वो है उनका विग्रह। नाम, रूप, लीला और धाम, इन चार वस्तुओं को उन्होंने यहां पर भेज दिया है और वो हमारे लिए हमारी पतित, दुखी और बद्ध अवस्था में भी उपलब्ध है। भगवान के साथ संपर्क करना है तो हमको शुद्ध होना पड़ेगा। ध्रुव जी थे, प्रहलाद जी थे, अनेक भगवान के भक्तों का भागवत में वर्णन आता है, उनको भगवान का दर्शन हुआ क्योंकि वो उस समय पूर्णतः भौतिक आकांक्षाओं से मुक्त होकर शुद्ध भक्त बन चुके थे। हम तो अभी बने नहीं है, तो इस बद्ध अवस्था में, इस अभी अपरिपक्व अवस्था में, इस अशुद्ध अवस्था में फिर कैसे हम उनसे संपर्क करें? तो बड़ी ही कृपा से भगवान ने इन चार वस्तुओं को नीचे भेज दिया है। कि चलो आपके जो अवस्था में आप हो, पतित से पतित अवस्था में भी होंगे हम सब लोग, फिर भी हम इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनकी सेवा कर सकते हैं, और वे सेवा उस रूप में हमारा सेवा स्वीकार भी कर सकते हैं। तो नाम सेवा जो है किसी भी अवस्था में हम कर सकते हैं, कोई नहीं कह सकता कि हम नाम नहीं कर सकते। आप कह सकते हो कि हम नाम नहीं करना चाहते, ये बोल सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं बोल सकता। जैसे हम भगवान के विग्रहों को नहीं देखेंगे ऐसा हम बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को विग्रह को नहीं देख सकते ऐसा नहीं बोल सकते। या हम भगवान के चरित्र को नहीं सुनेंगे, हमको फिल्म स्टार की कहानी सुननी है, ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन भगवान की कथा सुन नहीं सकते ऐसा नहीं बोल सकते। वो सुविधा आपके लिए उपलब्ध है, मतलब अप्रोचेबिलिटी कहते हैं उसको इंग्लिश में, उपलब्धि। भगवान इस रूप में हम सबके लिए उपलब्ध हैं, कितनी बड़ी बात है ये सोचो आप। जो गौलोक धाम में निवास करते हैं, हाँ, योगी ध्यानी तपी हजारों जन्मों तक तपस्या करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनको उनके चरण कमलों के नाखूनों से निकलने वाली एक दिव्य किरण भी नजर नहीं आती उनको, ऐसे दुर्लभ है वो। योगियों को ध्यान करने से दुर्लभ है, ज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त करने से नहीं मिलते वो, कर्म कांडियों को कर्म करने से नहीं मिलते हैं वो, सिद्धियों को सिद्धि प्राप्त करके नहीं मिलती है वो, ऐसे दुर्लभ भगवान जो है वो हम और आपके लिए उपलब्ध हैं उनके नाम के माध्यम से। केवल नम्रता होनी चाहिए। ये जो ज्ञानी तपी सिद्धि लोग होते हैं ना, योगी लोग होते हैं, वो सोचते हैं नाम जब क्या करना है, तो फालतू लोगों का काम है, योग करना चाहिए। सब कुछ त्याग करके हिमालय में जाकर हजारों सालों तक योग करना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। वो नाम करने वाले को पागल समझते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करते थे हरे कृष्ण महामंत्र में मद होश होकर, नवद्वीप के ज्ञानी लोग कहते थे कि ये पागल हो गया है। तो कहते हैं कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि तुम में ज्यादा अकल तो है नहीं, इसलिए तुम ये सब चक्कर मत पड़ना, तुम हरिनाम संकीर्तन करना। महाप्रभु जी ने उनको ये उत्तर दिया था कि मैं जब गया था तो ईश्वरपुरी जी महाराज ने मुझे आदेश दिया कि तुम में ज्यादा बुद्धि तो है नहीं, इसलिए तुम केवल हरिनाम का संकीर्तन करना, उसी में तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो भगवान होते हुए भी भगवान ने ये नम्र सरल अपनाया। भगवान तो उन योगियों को जो ज्ञानी लोग पढ़े थे नवद्वीप में उनका उनको डिफीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि भगवान के नाम को स्वीकार करने के लिए बेसिक नम्रता होना जरूरी है। भगवान की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए एक मूलभूत नम्रता का होना बहुत जरूरी है। आप बोलेंगे बच्चे को खेले तो कहानियां सुनते बैठते हैं, ऐसे नाम जपते रहते हैं, कुछ आता नहीं जाता नहीं, इसलिए वो बैठे हुए हैं। तो जो योग्य व्यक्ति होते हैं, जो काबिल व्यक्ति होती हैं, उनके लिए योग कहा गया है, उनके लिए ज्ञानार्जन कहा गया है, उनके लिए बहुत सारे कर्मकांड की विधियों का जो कोई नहीं कर सकता है उनके लिए कहा गया है। जो लोग नौसिखिया होते हैं, बहुत पतित होते हैं, उनके लिए नाम कहा गया है। लेकिन आप लोगों को सबको पता होना चाहिए ये कर्मकांडी क्या कहते हैं उसको, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकलो अशांत कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। ये सब लोग जो होते हैं, मैं अभी बैठ के वहां सोच रहा था कि पैसा है, धन दौलत है, पोजीशन है, अधिकार है, सम्मान है, सब कुछ है, डिग्री है, नॉलेज है, बहुत ज्यादा डिग्री है, फिर भी समाधान है क्या, संतुष्टि है क्या? शायद उत्तर उसका नहीं होगा। सब कुछ जो आप चाहते वो है और भी चाहते होंगे, वो भी मिल जाएगा आगे, लेकिन उसके बावजूद भी संतुष्टि समाधान होने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि काम उसके सबके होने के बावजूद भी मन में अनंत इच्छाएं निवास करती रहती है, और अनंत इच्छाओं के निवास करते हुए आदमी शांत नहीं हो सकता है, समाधान नहीं प्राप्त कर सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है, हमेशा तड़पता रहेगा, अस्थिर रहेगा, दुखी रहेगा, यहां वहां ढूंढता रहेगा क्या करूं, कैसे अपने आप को संतुष्ट करूं। लेकिन कृष्ण भक्त जो है केवल कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण धाम का सहारा लेकर निष्काम हो जाता है। ये बहुत अच्छी और समझने लायक बात है। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण काम है, काम वासनाएं हैं, भगवान को अलग रखकर की हुई इच्छाएं ये हमारे दुख की जड़ है, और जब तक ऐसी इच्छाएं हम हृदय में उसको पनाह दे रहे हैं, उसको आश्रय दे रहे हैं, तब तक मन में संतुष्टि होना नामुमकिन चीज है। जब ये हटने लगेंगे हमारी प्रिय इच्छाएं, जब ये हटने लगेंगे तब संतुष्टि पहले आएगी और आनंद उसके पीछे पीछे तुरंत आया है, आ जाएगा, अंदर ही बैठा हुआ है। इन अनंत इच्छाओं के दबाव से ये संतुष्टि और आनंद जो है वो छुपा रहता है, दबाया हुआ रहता है, गुप्त रहता है। जैसे ही भगवत नाम होता है, भगवत कथा होती है, तो ये कर्म जो है, इच्छाएं जो है हमारी उड़ जाते हैं, सब धीरे धीरे क्यों ना हो उड़ जाते हैं। जितना आपने सहारा लिया है, जितना परसेंट, उतना ये नष्ट हो जाते हैं। जितना ऊपर ऊपर से लिया हुआ है उतना हम लोग वैसे रहते हैं, पर हम संतुष्टि का अनुभव नहीं करते। हम हमेशा वो उदाहरण देते हैं, कृष्ण भावना जैसी है, कृष्ण भावना वो गुलाब जाम के पाक की तरह है, क्या बोलते हैं उसको, चाशनी की तरह है, जो शक्कर से बनती है, बहुत संपृक्त होती है वो, उसको डालकर अपने उबालते हैं, फिर उसको देखते हैं एक तार दो तार, तो वो शक्कर से संतृप्त हो जाती है और बाद में शक्कर उसके नीचे जमा होने लगती है, मतलब संतृप्त हो जाती है। उसके बाद में हम लोग जो गुलाब जाम को हमने घी में हल्के 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 पकाया है उसके अंदर डाल देते हैं, हम कैसे हैं उस गुलाब जाम की तरह जो अभी गिरने वाला है, और कृष्ण भावना कैसी है उस चाशनी की तरह है। जिस तरह से हम अपने आप को बनाया हुआ है, अच्छी तरह से मला हुआ है उसको प्रेम से, और धीरे 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 उसको अगर तला हुआ है, मंद आंच में ध्यान पूर्वक उसको घुमाया हुआ है, तो ही जाकर वो पूरा रस जो है अंदर तक खींच सकता है। हाँ, इसमें से कितना लोग जानते हैं गुलाब जाम बनाना, आप लोग मानते ना, मैं बड़ा रेसिपी बड़ा बता रहा हूं ना पाककृति में सही बता रहा हूं ना। हाँ, जैसे हम अच्छी तरह से उसको धीरे धीरे प्रेम से ध्यान पूर्वक उसको घी में तलेंगे, इक्वल उसको ब्राउन कर देंगे और डाल देंगे चाशनी के अंदर, तो पूरा अंदर के कण तक, सबसे अंदर का जो कण है वहां तक वो चाशनी घुस जाएगी, और गुलाब जाम जो है शुरू से लेकर एंड तक आप चबाएंगे तो उसको सीधे अंदर चलेगा अपना दांत उसके अंदर, इतने कड़क नरम नसा नहीं होगा, ये परिपूर्ण प्रक्रिया है। तो वो जो गोला बनाने की प्रक्रिया है वो साधना है, कृष्ण नाम, कृष्ण चरित्र, कृष्ण भक्तों का संग और कृष्ण धाम का आसरा, ये प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया अगर आप सही करेंगे तो आप एकदम बढ़िया से एक रंग के नरम नरम बन जाएंगे, और कृष्ण भावना जो तैयार रहती है हमेशा आपको अपने आप को देने के लिए, कृष्ण भावना आतुर है आपके अंदर घुसने के लिए। लेकिन अगर हम आधे पके हुए हैं तो क्या होता है, तो ऊपर ऊपर का हिस्सा जो है शुगर को खींच लेता है, और अंदर का हम देखते हैं गुटली रह जाती है, वो दांत में आ जाती है, हम उन्हें बराबर नहीं बनाए। तो हम अभी कुछ ऐसे हैं, हाँ, वो जल्दी जल्दी में बनाया हुआ, ऊपर ऊपर से पका हुआ और चाशनी को आधा आधा खींचा हुआ ऐसे हम गुलाब जाम हैं। इसलिए हमको कृष्ण नाम का साधना बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, कृष्ण चरित्र का साधना, श्रवण साधना बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए। प्रभुपाद जी कहते हैं, मैं आपको पढ़ के बताता हूं, चौथे श्लोक में इस अध्याय के तात्पर्य में लिखा है, भगवान की महिमा का वर्णन परंपरा की पद्धति से मिलता है, मतलब गुरु और शिष्य के परंपरा से। ऐसे वर्णन का आनंद उन लोगों को मिलता है जो इस जगत के मिथ्या और क्षणिक वर्णन में रुचि नहीं रखते। इस दुनिया की जो कथाएं हैं, फिल्म स्टार्स, पॉलिटिशियंस, प्रसिद्ध व्यक्तियों की, उनमें रुचि रखते नहीं हैं। भगवान का गुणगान जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए बद्ध जीवों के लिए सबसे उपयुक्त औषधि है। अतएव भगवान की महिमा सुनना बहुत ही भाग्यवान चीज है, बहुत ही श्रेष्ठ वस्तु है। फिर 13वें श्लोक में वो लिखते हैं, मृत्यु के द्वार पर होते हुए ये परिस्थिति कह रहे हैं, अपने व्रत के कारण मैंने जल ग्रहण करना भी छोड़ दिया है, फिर भी आपके कमल मुख से निकले कृष्ण कथा रूपी अमृत का पान करते हुए मेरी असह्य भूख और मेरे असह्य प्रयास मुझे अभी बाधा नहीं पहुंचा रही है। अभी हम इस श्लोक के प्रसंग पे आते हैं। इस श्लोक का प्रसंग क्या है, अभी नौ स्कंद का वर्णन समाप्त हो चुका है। हाँ, उसके पहले क्या हुआ था, परीक्षित महाराज को श्राप मिला था कि आप 7 दिन में सर्प पक्षी के द्वारा दंश होकर मर जाओगे। तो उन्होंने ये नहीं प्लान किया कि अब जाएंगे, अच्छा टीवी देखेंगे, सब खाना वाना खाएंगे, सब बहुत घूम के आएंगे, सब जगह जो करना है वो करेंगे और फिर मर जाएंगे, क्या है भोग लो जितना भोगना है, ऐसा नहीं। उन्होंने तुरंत राजवस्त्र त्याग दिया, राज अधिकार राजपद त्याग कर दिया, पानी और अन्न और निद्रा भी त्याग कर दिया। कितने बड़े महात्मा थे वो, और तुरंत आकर संत के चरणों में बैठ गए सुखदेव जी के, और भगवान की कथा का आनंद लेना शुरू कर दिया। उन्होंने प्रश्न किए, उस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव जी ने उनको भगवान के भक्तों का चरित्र सुनाया। अभी देखो, जो व्यक्ति कुछ दिन पहले संकट जंगल में गया था और प्यास लगी थी उसको, और उसको सहन नहीं हुई प्यास अपनी, तो साधु के पास गया, जल मांगा, साधु ने प्रतिसाद नहीं दिया, उसके पुकार का जवाब नहीं दिया, पानी नहीं पिलाया, तो क्रोध आ गया, सांप डाल दिया सर पे उसके, अपमान के रूप में। ऐसे व्यक्ति वही व्यक्ति है अभी। अभी एक दिन शिकार में उनको प्यास लगी तो उनको कंट्रोल नहीं हुआ, लेकिन अभी 6 दिन शायद हो गए होंगे, क्योंकि 9 स्कंद खत्म हो गए हैं। 6 दिन में उस व्यक्ति ने ना जल पिया है, ना भोजन किया है, ना निद्रा का अवकाश लिया है। तो हम सोचेंगे, अरे इसका दिमाग कितना अभी शुगर लेस हो गया होगा, हाँ दिमाग में शुगर ही नहीं उसके, तो भोजन ही नहीं किया है, विश्राम नहीं किया होगा, तो कितना सर दुखता होगा, कितना पित्त बढ़ गया होगा उसका, पेट में कितनी जलन होती होगी एसिडिटी की वजह से, भोजन नहीं किया उसने, हाँ पैर कितने दुखते होंगे बैठ बैठ कर, आप सोच सकते ना। अभी मैं आकर वो 4 घंटा प्रवचन किया तो सबकी आपकी अवस्था ऐसी हो जाएगी मेरी भी हो जाएगी बैठे बैठे। देखो 7 दिन बैठे हैं, रात को भी नहीं सोए हैं, ऐसा नहीं कि सुबह 3 घंटा, शाम को 3 घंटा, दोपहर में महाप्रसाद की व्यवस्था, वो सोने की व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था, नरम गद्दे की सोने के लिए व्यवस्था, रात को 3 घंटा, फिर रात का भोजन, फल फलाहार और मिठाई, और फिर आए आराम, एसी के अंदर सो, सुबह उठो फिर भागवत सुनो, ऐसी व्यवस्था नहीं थी उधर। 24/7 168 घंटा लगातार ऐसे कोई भागवत हुई नहीं है उसके जैसी। एक भागवत हुई थी वो 30 दिन तक, 30×24 720 घंटा, उद्धव जी महाराज और भगवान की पत्नियां सुन रही हैं। ये दिव्य भागवत कथा है, इसमें प्यास पूर लग। अब इसका रहस्य क्या है, परीक्षित महाराज जी क्या बता रहे हैं, 9 स्कंद हो चुके हैं, और आप सोचेंगे कि अभी 9 स्कंद होने के बाद में तो आदमी थक गया होगा, तो भी और क्या प्रश्न पूछेगा वो। बोले महाराज जी आप बोलते जाओ, मैं सुन रहा हूं, जो बोलना है बोलो, अभी मैं थक गया हूं, अभी आप जानते ही हो मैं 6 दिन से भूखा हूं। वो उल्टा प्रश्न कर रहे हैं कि आपने अभी इतना सा सुनाया, अभी कृष्ण का वर्णन नहीं सुनाया आपने, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कहां पर आए, मैंने सुना वो मथुरा से गोकुल में आए थे, वो क्यों आए गोकुल में, अब बाद में सुना कि वो द्वारका गए थे, मथुरा गए थे, वो क्यों गए वहां पे, अरे मैंने ये भी सुना कि उनके कई हजारों पत्नियां थी, अरे कौन कौन थी पत्नियां थी वो। ऐसे उत्सुकता से प्रश्न पूछ रहे हैं 6 दिन भूखा प्यासा रहने के बाद, और स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि आपके दिव्य श्री मुख से श्री कृष्ण कथा का अमृत बह रहा है, इसलिए मुझे जो प्यास तड़पा रही थी जिसके वजह से सब कुछ हुआ है, वही प्यास और उसके बाद में भूख और निद्रा मुझे कोई कष्ट नहीं दे रही है। इसका मतलब क्या हुआ, वो शरीर की जो वेग हैं, निद्रा भूख और प्यास, इस वेग से वो परे जा चुके हैं। कैसे जा चुके हैं, केवल श्रवण के माध्यम से, कोई योग नहीं कर रहे, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो तो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं कि चलो भाई, ऐसे एक बरसाने में एक व्यक्ति है जिसको औरत है, वो नई शादी हुई थी, सासू ने उसको टोक दिया कि तू बहुत खाती है, बहुत बेकार का खर्च करती है, उसको गुस्सा आ गया, तो उसने किसी योगी से मुलाकात की, और योगी ने उसको एक ऐसा तकनीक बता दिया योग का कि रोज सुबह उठकर वो कुछ समय सूरज को देखती है, उसके बाद में कुछ करती है क्रिया, उसको ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, कुछ नहीं लगता है, कई साल हो गए उसने कुछ खाया पिया ही नहीं, फिर भी अच्छे रहते, काम करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रजवासी है, हाँ आप लोगों को अच्छा लगेगा ऐसा कुछ टेक्निक। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसा कोई योग का टेक्निक भी उन्होंने अपनाया नहीं था, कभी 7 दिन सुनना ही है तो अभी चलो कुछ योग प्रैक्टिस करके जाएंगे तो अच्छा रहेगा, खाने पीने का अवकाश बचेगा मेरा, कुछ नहीं कर रहे वो। शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर कोई भी ऐसी विधि नहीं कर रहे वो जिससे उनको भूख प्यास निद्रा से मुक्ति मिले। केवल सुखदेव जैसे शुद्ध भक्त के मुख से, गुरु परंपरा के माध्यम से, जैसे बताया गया गुरु परंपरा के माध्यम से कृष्ण चरित्र और कृष्ण भक्त चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और उसमें इतनी शक्ति है उसका परिणाम खुद अनुभव कर रहे हैं और हमको बता रहे हैं, हम और आप लोगों को बता रहे हैं, भाइयों और बहनों, देवी और सज्जनों, मेरी अवस्था को देखो, बोल रहे हैं कि मैंने इनके मुख से कृष्ण चरित्र और कृष्ण भगवान के भक्तों का चरित्र सुना है इसलिए मेरी भूख प्यास नष्ट हो गई, मुझे अभी वो बाधा नहीं हो रही है जो पहले हो रही थी। कितनी बड़ी बात है। और क्या हम सब लोगों को भूख प्यास का कष्ट नहीं है, निद्रा का कष्ट नहीं है? बहुत सारे काम करने होते हैं बीच में निद्रा आ जाती है, हाँ बहुत सारा पढ़ना बाकी है, एग्जाम कल सुबह 10 बजे है, सोने की इच्छा नहीं है, पढ़ना है लेकिन निद्रा बीच में आ जाती है। कई प्रकार के ऐसे लोग होते हैं जिनको करोड़ों का डील करना होता है और तैयारी करने का समय नहीं है, सोना बीच में पड़ता है, तो क्यों निद्रा आ रही है हमको, रात को काम करेंगे सुबह करोड़ों का डील कर सकते हैं लेकिन उसका कोई भौतिक तरीका नहीं है। योगी भी होता है उसको भी कुछ समय 15 मिनट क्यों ना हो सोना ही पड़ता है, क्योंकि निद्रा जो है ये बद्ध जीव का एक अविभाज्य अंग है, वो आप टाल ही नहीं सकते। भय जो है वो बद्ध जीव का एक अविभाज्य अंग है, कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो जब यमदूत सामने आते हैं वो डर जाता है, वो पेशाब टट्टी करता है, उसको पसीना आ जाता है। बड़े से बड़े भयंकर क्रूर लोग भी जो होते हैं जो कभी भी जीवन में किसी को डरते हुए नजर नहीं आते हैं लेकिन जब वो यमदूत को देखते हैं तो बच्चों की तरह रोते हैं। हमने देखा है, हमारे हॉस्पिस में आइए, आप हॉस्पिटल में आइए तो देखो आप, बड़े बड़े जिन्होंने अपने जीवन पे गर्जना किया था वो हॉस्पिटल के बेड पर रोते हैं बच्चों की तरह, तो यमदूत का दर्शन करते हैं। हाँ, तो भय भी हर एक जीव का अविभाज्य अंग है, आहार सब चीज के लिए चाहिए, तो ताल नहीं सकते उसको। तो ये सब स्तरों से अगर मुक्त होना है बद्ध जीव को तो उसको यही एक मार्ग है श्रवण का। और यही मार्ग क्यों कह रहे हैं, क्योंकि तो सबसे आसान और सबसे श्रेष्ठ मार्ग है ये। सर्वश्रेष्ठतम होने पर भी सबसे आसान है, वो कोई भी कर सकता है, योग सब लोग नहीं कर सकते। आपके पीठ में दर्द है तो कैसा आसन करेंगे आप? बैक एक आपके लिए, सबके लिए आज के लिए बैक एक का गिफ्ट सबको मिला हुआ है कलयुग में, वो क्या योग करेगा, कुर्सी में बैठ सकता नहीं वो, और भूख का भी कौन टाल सकता है। लेकिन सुखदेव जी के श्री मुख से दिव्य कृष्ण चरित्र का और भक्त चरित्र का वर्णन सुनते हुए यहां पर ये प्रमाण दिखाई पड़ रहा है, वो खुद कह रहे हैं कि अभी मुझे ये सब बाधाएं नहीं हो रही है, आप बोलिए। और अगर समझो श्रोता अगर सोया हुआ है, कोई प्रश्न नहीं कर रहा है, तो वक्ता भी कहेगा चलो भाई 5-10 मिनट में कथा को समाप्त कर लो, क्योंकि श्रोतागण को सुनने की इच्छा नहीं है। तो सुखदेव बोलते हैं अगर 6 दिन हो गए हैं, हमारा जो श्रोता है उसको नींद आ रही है, बेचारा थक गया है, और वैसे भी कारण भी ऐसा ही है, क्या करेगा बेचारा, गुस्सा करने का कारण नहीं है, 6 दिन से खाया पिया नहीं है, तो हम भी थोड़ा विश्राम करते हैं, अभी थोड़ा सा उसको शांत करके कथा समाप्त कर देते। सुखदेव जी को ऐसा मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि सुखदेव जी बार बार परीक्षित महाराज को अभिनंदन कर रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस, आपका गौरव है, आपका अभिनंदन है, क्योंकि जैसे कथा बढ़ रही है उतनी ज्यादा उत्साही आप होते हुए नजर आ रहे हो, जैसे कथा आगे बढ़ रही है वैसे आप थके हुए नजर नहीं आ रहे हो, जितनी उत्साही पहले थे उससे कई गुना उत्साही मुझे आज देख रहा हूं आपको मैं, और आपके प्रश्नों से मुझे भी प्रेरणा मिल रही है, उत्साह प्राप्त हो रहा है उत्तर देने के लिए, कितनी बढ़िया चीज है ये। हाँ, ये सबसे श्रेष्ठ सत्संग है, इसमें इतना क्या कहते हैं उसको, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एंथुसियाज्म, अनंत स्तर पर बढ़ती हुई उत्साह ये श्रोता के अंदर है, और उसके अनुसार प्रोपोर्शनेटली, हाँ उसी के अनुसार वक्ता के अंदर भी बोलने की इच्छा प्रकट हो रही है, वो उसके हृदय में जो भी अनुभूतियां हैं जो भी बताना है बड़े उत्साह के साथ बता रहा है, क्योंकि श्रोता जो है बड़े उत्साह से अपना पात्र खोल के बैठा हुआ है, महाराज जी डालो इसके अंदर, मेरा पात्र विशाल है, आपके पास इतना विशाल सागर है उतना ही विशाल मेरा पात्र है, आप चिंता मत कीजिए कि ये ऊपर से नीचे गिर जाएगा, मैं सब धारण कर लूंगा उसको, सब ग्रहण कर लूंगा उसको। ऐसा सुंदर श्रोता के साथ में 88,000 साधु लोग बैठे हुए हैं, उसमें कई प्रकार के लोग हैं, कोई सिद्धि भी थे उसके अंदर, कोई ज्ञानी भी थे, कोई योगी भी थे, सब लोग थे उसके अंदर। भागवत में लिखा है कि उसके जो श्रोतागण थे वो सब प्रकार के लोग थे उसके अंदर। वो सब लोग भी परीक्षित महाराज के इस दिव्य और उत्साही उदाहरण से भी प्रेरित थे, और उनकी वजह से श्री सुखदेव जी के मुख कमल से यह अमृत बह रहा था। इतनी बड़ी बात है। तो प्रसंग क्या है कि सुखदेव जी को परीक्षित जी कह रहे हैं, मुझे कृपया इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए, ये कृष्ण भगवान जो है, ये मेरे ग्रैंडफादर जो थे सब लोग, हाँ कौन कौन थे वो, कौन थे उनके ग्रैंडफादर लोग बताओ? अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, विश्व के जाने माने प्रसिद्ध व्यक्ति थे वो, ये सब मेरे दादाजी लोग थे, और इन दादाजी लोगों ने सब उन कृष्ण का सहारा लिया था। मैंने सुना है कि मुझे भी उसी कृष्ण ने बचाया है गर्भ अवस्था में, तो मैंने सुना है अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पांडवों को इन्होंने बचाया है, और मैंने सुना है कि मेरे दादाजी ने इनका ही सहारा लिया था, और वो कृष्ण जो है इनके सारथी बने थे। सब मुझे सुना, मुझे सुनना है, क्योंकि जानते हैं कि मैं एक दिन के बाद जाने वाला हूं, मुझे जाने के पहले सुनना है सब कुछ, कैसे मेरे महान दादाजी थे सब, और कैसे वो महान कृष्ण थे जिनका सहारा मेरे दादाजी ने लिया था, मैं सब सुनना चाहता हूं, मैं आतुर हूं, उत्सुक हूं। और उसके उत्तर के रूप में दशम स्कंद का आरंभ हो रहा है। कितनी सुंदर बात है, देखो आप, मतलब अभी भगवान के चरण कमल, भगवान के तटस्थान, भगवान का नाभि कमल, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन कर चुके हैं नवे स्कंद तक। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि श्रीमद् भागवतम जो है ये भगवान का विग्रह है, और अभी वो मुख कमल को देखने के लिए बड़े आतुर हैं, मतलब कृष्ण का चरित्र सुनने के लिए बड़े व्याकुल हैं वो, और इसलिए सुखदेव जी ये अमृत उनको भी देने के लिए तैयार हैं। हम सबको ये समझना चाहिए कि अगर हमको ये अमृत चाहिए तो उसकी कीमत क्या है, उत्सुकता, आतुरता, तीव्र इच्छा, और ये होगा तभी वो अमृत अपने आप स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। जो भी वक्ता होगा उसके मुख से भगवान ये अमृत आपको पान कराएंगे। इसलिए कथा का सबसे बड़ा रोल क्या है, जब हम यात्रा जाते हैं, कहीं भी घूमते हैं दर्शन करने के लिए, समझे दिन भर आप बस में सो जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कथा के समय जगे रहो, क्योंकि कथा के समय उस धाम का महात्म्य, उस धाम की कथा, उस धाम का सार जो है वो प्रकट होता है, और बाकी समय सब दिखता है, मंदिर का कलश गीले रंग का है, गेहुए रंग का है, ये छोटा है कलश, ये बड़ा है, ये सब आंखों को दिखता है, समझता कुछ नहीं, लेकिन उस धाम का जो रहस्य है वो कथा के माध्यम से प्रकट होता है। इसलिए हम कहते हैं कि आप खड़े रहो, नाचते रहो, लेकिन कथा में जगे रहो। उसकी वजह से जैसे उत्साह श्रोताओं में होता है, वक्ता को भगवान की तरफ से प्रेरणा प्राप्त होती है, शब्द प्राप्त होते हैं, अनुभूतियां प्राप्त होती है, और वो भगवान के कृपा से श्रोताओं के हृदय तक पहुंचाती है। तो ये प्रसंग ऐसा है कि सुखदेव जी आरंभ कर रहे हैं इनका उत्साह देखकर, वो कह रहे हैं कि बहुत समय पहले पृथ्वी पर राक्षसों का भार बढ़ गया था, तब पृथ्वी माता काय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आई, जो प्रजापिता, सर्वश्रेष्ठ प्रजापिता तो ब्रह्मा ही है। ब्रह्मा जी ने उनका पीड़ा देखते हुए, क्योंकि पृथ्वी को कभी भार नहीं होता है, सब भार सहन कर सकती है, लेकिन जब पाप होता है और असत्य होता है, चीटिंग होता है, तो उसका भार वो सहन नहीं सकती, फिर वो इतना सा क्यों ना हो, वो एकदम व्याकुल हो जाती है। तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा के पास आती है, ब्रह्मा जी उनका दुख देखते हैं और उनको क्षीर सागर के, क्षीर उदकशाही विष्णु जी के समुद्र के किनारे में लेके जाते हैं। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये कौन विष्णु हैं। नारायण तक भगवान के जितने भी अवतार हैं, विस्तार हैं, वो दिव्य जगत में रहते हैं जहां पर जन्म मृत्यु नहीं होता है, लेकिन नारायण के बाद में जो विस्तार हैं वो महाविष्णु हैं, वो योग निद्रा में रहते हैं, और केवल निद्राएं निद्राएं में पूरे भौतिक जगत का निर्माण करते हैं, उनको जगना भी नहीं पड़ता, कांड इवन हैव टू बी अवेक। वो जब निर्माण करते हैं, उनके रोम रोम से बीज रूप में ब्रह्मांड निकलते हैं, अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं, जैसे वो सांस छोड़ते हैं, उच्छ्वास कहते हैं उसको, तो अनंत ब्रह्मांडों का निर्माण होता है, उसमें से अगर आप एक ब्रह्मांड लेंगे तो उस ब्रह्मांड में वो गर्भ उदक शायी विष्णु के रूप में विस्तारित होते हैं। मतलब अनंत ब्रह्मांड है तो अनंत गर्भोदक शाही विष्णु है, एक महाविष्णु है, अनंत गर्भोदक शाही विष्णु है। तो एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक शाही विष्णु है, गर्भ उदक सागर है, उसमें गर्भोदक शाही विष्णु विराजमान है, शेषनाग शैया बने हुए हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, उनके नाभि कमल से कमल निकलता है और उसमें ब्रह्मा जी का जन्म होता है और उसमें सारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। फिर उसी ब्रह्मांड में एक और जगह है, नाम है श्वेत द्वीप, जो इस ब्रह्मांड का वैकुंठ है। सारे वैकुंठ तो परे हैं उसके, लेकिन एक ब्रह्मांड के अंदर भगवान ने वैकुंठ भी दिया है, वह है श्वेत द्वीप। वहां पर इस गर्भोदक शाही विष्णु के विस्तार क्षीर उदक शाही विष्णु विराजमान है, वो क्षीर सागर के अंदर विराजमान है, उनको भी अनंत शेष की शैया दी हुई है। और वो क्षीर उदक शाही जो विष्णु है वो हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान रहते हैं। महाविष्णु उनके विस्तार गर्भ उदक शाही विष्णु, उनके विस्तार क्षीर उदक शाही विष्णु और उनके विस्तार परमात्मा, जो हम सबके और सभी जीवों के हृदय में साथ देने के लिए विराजमान है। तो अभी ये कहाँ गए हैं? क्षीर सागर के किनारे गए हैं, अंदर नहीं गए हैं, अंदर एंट्री नहीं है, खाली किनारे पर खड़े हैं। देवताओं को भी भगवान के पास जाने की अनुमति नहीं होती है, बहुत कम लोगों को मिलती है, कभी कभी ब्रह्मा जी को मिलती है, कभी कभी शिव जी को मिलती है, कभी कभी गणेश जी और पार्वती जी को मिलती है, लेकिन हर देवता भगवान के पास नहीं मिल सकते हैं। तो किनारे में खड़े होकर सारे देवताओं को लेकर, क्योंकि देवता भी सब त्रस्त थे, केवल पृथ्वी नहीं थी, सभी देवता त्रस्त थे राक्षसों के आतंक से। तो उन्होंने वहां पर क्या लिखा है, पुरुषम पुरुष सूक्ते न उपतस्ते समाहितः, उन्होंने पुरुष सूक्त गाया, ओम सहस्त्र वीर्य सहस्त्रपाद, हम लोग अपने यज्ञ में गाते हैं उसको, आहुति अर्पण करते हैं। ये वो श्लोक हैं जो भगवान ब्रह्मा शिव उदक शाही विष्णु का ध्यान आकर्षित करने के लिए, उनकी प्रार्थना करने के लिए गाते हैं इसको। सभी देवताओं के साथ उन्होंने ये श्लोकों का संग्रह जो है उसको गाया और भगवान के साथ संपर्क किया, तो भगवान ने उनको हृदय में ही जवाब दिया। ऐसे नहीं कि भगवान प्रत्यक्ष आए और वार्तालाप हुआ, वहीं से संदेश भेज दिया हृदय में। क्या संदेश भेज दिया? कि अभी हम आ रहे हैं। यह हुआ भागवत जी का वर्णन। गर्ग संहिता में इसका विस्तार रूप में वर्णन दिया है, उसमें लिखा है कि क्षीर उदक शाही विष्णु प्रकट हो गए उनके सामने, उन्होंने पृथ्वी को कहा, हे पृथ्वी देवी, हे भूदेवी, आपकी समस्या का समाधान जो है वो केवल श्री हरि श्री कृष्ण ही कर सकते हैं, जो गौलोकेश्वर हैं। और सारे देवताओं को लेकर, ब्रह्मा जी को लेकर, पृथ्वी को लेकर ये क्षीर उदक शाही विष्णु जो है ये गौलोक धाम चले गए। सब ब्रह्मांडों के आवरणों को पार करते हुए, भौतिक जगत को पार करते हुए, महातत्व को पार करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति एवं वैकुंठ को पार करते हुए, अयोध्या द्वारका और मथुरा को पार करते हुए ये गौलोक धाम पहुंच गए सभी लोग। और जैसे ही गौलोक धाम पहुंच गए तो श्री हरि श्री कृष्ण गौलोकेश्वर उन्हें दर्शन दिया, और दर्शन देने उन्हें वंदन कर रहे थे, पृथ्वी देवी रो रही थी। पृथ्वी को भगवान ने कहा, गौलोक में आई हो, अभी कैसा रोदन, अभी क्यों रो रही हो? उनको तो अपना पृथ्वी का दुख था ना, वहीं का उसको लेकर ऊपर गई थी। भगवान ने कहा, अभी यहां दुख करने का कोई बात नहीं है। जैसे ही वार्तालाप हो ही रहा है तो जो शिरोदक शाही विष्णु उनको लेकर आए थे वो सबके आंखों के सामने श्री कृष्ण के शरीर में विलीन हो गए। फिर उसके बाद में हजारों सूर्यों के जैसे प्रकाशमान नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए गौलोक धाम में, और वो भी श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। फिर उसके बाद में आप ध्यान सुनिए, बहुत दिव्य लीला है। फिर श्वेतद्वीप के विष्णु जो गर्भोदक शाही विष्णु हैं, विराट पुरुष हैं, इसकी संग विष्णु लक्ष्मी देवी है, इसके अनेक पार्षद हैं, वो सभी पार्षदों के साथ वहां प्रकट हो गए गौलोक में, और वो भगवान श्री हरि के शरीर में प्रवेश कर चुके। फिर हजारों सूर्यों की तरह प्रकाशित प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता देवी, सारी वानर सेना प्रकट हो गई, सारा अयोध्या प्रकट हो गया। वहां पर 1,00,000 पहियों के दिव्य रथ पर धारण बैठे हुए प्रभु रामचंद्र वहां प्रकट हो गए और सारी सेना के साथ श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। फिर उसके बाद में यज्ञ पुरुष नारायण जो हैं, जो दिव्य जगत के इंचार्ज हैं, उनकी पत्नी का नाम दक्षिणा देवी है। दक्षिणा देवी और यज्ञ पुरुष नारायण जो है वो वहां प्रकट हो गए और वो श्री हरि के शरीर में विलीन हो गए। और आखिर में नर नारायण ऋषि प्रकट हो गए और वो भी भगवान हरि के शरीर में विलीन हो गए। ये सब सब देवता लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है। जो हमारे पूजनीय इतने अवतार हैं, एक की बात एक की बात प्रकट हो रहे हैं गोलोक धाम में और भगवान के शरीर में विलीन हो रहे हैं। ये बता रहे हैं कि हम सब इनके ही द्वारा प्रकाशित हैं, इनके द्वारा निर्माण किया हुआ है हमारा। फिर भगवान परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी को बता रहे हैं और ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं आऊंगा, यदुकुल में जन्म लूंगा और आप सब लोग आपके पत्नियों के और सहयोगी लोगों के साथ में यदुकुल में जन्म लेना। मैं पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए अवतार लूंगा यदुकुल में। वेद मेरे शब्द होंगे और ब्राह्मण मेरे मुख होंगे जिनके मुख के द्वारा मैं भोजन स्वीकार करूंगा और गाय मेरा शरीर होगा। ये तीन बातें बताई उन्होंने। इस समय राधा रानी वहां पर खड़ी थी और ये सब वार्तालाप सुन रही थी। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं यदुकुल में अवतार लूंगा पृथ्वी पर, तो वो बेहोश हो गई। तो भगवान ने कहा, बोले उनको सब सखियों ने होश में लाया, तो उन्होंने कहा, राधा रानी आप क्यों रो रही हो? आपके वियोग में मैं जी नहीं पाऊंगी। मैं सुन रही हूं कि आप जाने वाले हो, इसलिए आपके वियोग में मैं शरीर त्याग कर दूंगी। तो भगवान ने कहा, कोई जरूरत नहीं, आपकी क्या इच्छा है बताओ, मैंने तो आपको साथ ले जाने का ही प्लान किया है। मैंने इनको बताया नहीं है, ये तो देवता लोग हैं, लेकिन मैं आपको संग लेकर ही जाऊंगा। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ब्रज को वृंदावन को छोड़कर नहीं आ सकती। जहां पर वृंदावन नहीं है, यहां पर जमुना जी नहीं है, यहां पर गौलोक गौलोक में गोवर्धन नहीं है, वहां पर मैं नहीं रह सकती। तो भगवान ने कहा कि मैंने गौलोक धाम का 84 कोस का हिस्सा गोवर्धन और जमुना जी के साथ में पृथ्वी पर भेज दिया है। वो भौम वृंदावन के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि भूमि पर वो प्रकट होगा, इसलिए भौम वृंदावन होगा। तब राजा रानी प्रसन्न हो गई। उन्होंने एक और बात कही, हम आएंगे आपके साथ, लेकिन जब तक आपका दर्शन नहीं होगा तब तक ना हम आंख खोलेंगे, ना किसी को देखेंगे, तब तक ना हम किसी की बात सुनेंगे, किसी का ध्वनि आवाज सुनेंगे। हम गूंगे रहेंगे, बहरे रहेंगे और अंधे रहेंगे। इसलिए जब उनका जन्म हुआ तो उन्हें प्रतिसाद नहीं दिया। जब कृष्ण आए रेंगते हुए, तब उन्होंने आंखें खोली है। ऐसे राधा रानी का प्रेम है। फिर भगवान ने ब्रह्मा जी के नेतृत्व में आए हुए सभी देवताओं को बताया कि मैं वसुदेव देवकी के गर्भ में जन्म लूंगा। ये पिछले जन्म में कश्यप और अदिति थे, कृष्ण और कृष्ण गर्भ थे। मेरे लीला अवतार बलराम जी रोहिणी के गर्भ में आएंगे और बलराम जी बनेंगे। लक्ष्मी देवी रुक्मिणी बनेगी। पार्वती देवी जाम्बवान की लड़की जाम्बुवती बनेगी। दक्षिणा देवी जो यज्ञ पुरुष की पत्नी है वो मेरी और एक पत्नी बनेगी, लक्ष्मणा देवी। गंगा देवी मेरी मित्रविंदा के नाम में पत्नी बनेगी। भगवती देवी भद्रा बनेगी। कामदेव प्रद्युम्न बनेंगे। ब्रह्मा जी आप स्वयं अनिरुद्ध बनेंगे और द्रोण नाम के वसु नंद महाराज बनेंगे। धरा नाम की उनकी पत्नी जो है यशोदा बनेगी। सुचंद्र नाम के जो वसु है वो राधा रानी के पिता बनेंगे और कलावती नाम की जो देवी है वो कीर्ति मैया राधा रानी की माता बनेगी। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो प्राण वसु है वो शूरसेन बनेंगे, जो ध्रुव वसु है वो देवक बनेंगे, जो वसु है दूसरे वो उद्धव जी बनेंगे, दक्ष प्रजापति है वो अक्रूर जी बनेंगे, जो मरुद देवता है सबका वर्णन भागवत में आता है वो उग्रसेन बनेंगे, जो प्रहलाद है वो सात्यकी बनेंगे यादव, और सर्वश्रेष्ठ वसु जो है वो भीष्मदेव बनेंगे। अग्निदेव द्रोणाचार्य के रूप में आएंगे और शंकर भगवान अश्वत्थामा के रूप में लीला करने के लिए आएंगे। उस समय भगवान ने योग माया को आदेश दिया, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, कि आप जब देवकी के सातवें गर्भ में मेरे लीला अवतार बलराम जी आएंगे तो उनको संकर्षित करके आप रोहिणी के गर्भ में प्रस्थापित कर देना, ऐसे उन्होंने आदेश दिया। ये सुंदर लीला है, भगवान हमको आश्वस्त कर रहे हैं कि जब भी संकट आता है और जब लोग मेरे शरण लेते हैं तो मैं आता हूँ। हाँ, संभवामी योगे योगे, एक बार नहीं अनंत बार आता हूँ। आज भी आता हूं और कल भी आया था और परसों भी आऊंगा, ये हम सबको वादा कर रहे हैं। जब जब लोग असहाय होकर भौतिक दुनिया में अपनी श्रद्धाओं को त्याग कर उन पर श्रद्धा रखकर उनकी शरण ग्रहण करते हैं तो वो आ जाते हैं। अभी कैसे आए हुए हैं? नाम के रूप में आए हुए हैं। हम सब योग्य नहीं हैं हाँ कोई विग्रहों की पूजा करने के लिए, जैसे द्वापर में हुआ करता था, यज्ञ करने के लिए जैसे त्रेता में हुआ करता था, विरक्त होकर ध्यान करने के लिए हजारों साल के लिए जो सत्ययुग में हुआ करता था, उस किसी भी चीज के लिए हम योग्य नहीं। ना हमारे पास आयु है, ना हमारे पास स्मृति है, ना हमारे पास सद्गुण है, कुछ भी नहीं है। प्रायेण अल्पायुषा कला वस्मिन युगे जनः मंद स्मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य विपद्रुतः। हम क्लेश में हैं, परेशान हैं, दुर्भागी हैं, मति से मंद हैं, बुद्धि हमारी क्षीण है, आयु बहुत कम है, स्मृति भी नहीं है, कुछ याद भी रहता नहीं है। ऐसी अवस्था में क्या कर सकते हैं? ना ध्यान कर सकते हैं, ना विरक्त हो सकते हैं, ना ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, ना कोई विधि कर सकते हैं, ना कोई विग्रहों की पूजा कर सकते हैं। जो भी कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे आसान चीज, सबसे श्रेष्ठ तरीके से आप कर सकते हैं वो है भगवान नाम का कीर्तन और भगवान नाम का जप, और ये हमारा सबसे बड़ा वरदान है। और इन सब बातों में क्या वर्णन आता है कि भगवान कह रहे हैं, राधा रानी कह रही है कि मैं जमुना देवी और गिरिराज गोवर्धन के बिना नहीं रह सकती, मैं वृंदावन को छोड़कर नहीं रह सकती। मतलब जमुना देवी और वृंदावन जो है और गिरि गोवर्धन जो है, ये कृष्ण भगवान के लीलाओं का अविभाज्य अंग है। जहां पर ये वस्तुएं नहीं है वहां पर कृष्ण लीला नहीं हो सकती है, ये सोचना जरूरी है बहुत ही। क्योंकि आज श्री वृंदावन धाम में जमुना जी का स्थिति ऐसा है कि जमुना जी वहां पर से नष्ट हो गई, दिल्ली में उसको टर्न कर लिया गया है, और जो राजस्थान और फलाना फलाना राज्यों के जितने भी मलमूत्र के नाले हैं वो सब उसके पात्र में छोड़े गए हैं, और ब्रज में जो ब्रज का अविभाज्य अंग है जमुना जी, ब्रज के जो अनंत लीलाएं हैं उसका मूल जमुना जी किनारे में है, या जमुना जी के अंदर है। भगवान की अनंत लीलाएं जमुना जी के जल के अंदर या जल के ऊपर या जल के किनारे में हुई है। सारा जो प्रसंग है 12 वनों का, 108 वनों का, 137 वनों का जो दिव्य प्रसंग है वो सब जमुना किनारे में हुआ है। सब ब्रज जमुना किनारे में है, गोवर्धन भी जमुना किनारे में, गोवर्धन की तलहटी में यमुना जी रहती थी, अभी दूर हो गई है लेकिन उसका आशित गोवर्धन की तलहटी में है, श्री वृंदावन धाम में है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो राधा रानी तय करे कि हम चले जाएंगे, नहीं रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि यमुना जी नहीं है, उन्होंने कहा था पहले से नहीं रहूंगी यहाँ पर, और कलयुग का प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि गोवर्धन भी धीरे धीरे धस रहे हैं, जब पूर्णतः जमीन में धस जाएंगे तो ब्रज नष्ट हो जाएगा, मतलब नष्ट नहीं होगा वो अदृश्य हो जाएगा, हमारी नजरों से ओझल हो जाएगा, अब प्रकट हो जाएगा, जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखेगा, दिव्यता वैसे रहेगी, लीलाएं चलती रहेगी, हमारे लिए वो अप्रकट हो जाएंगी। तो हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है कि हम भगवान से प्रार्थना करेंगे जमुना जी दोबारा लौट के आए, ये सब जो कंस जैसे राक्षस पॉलिटिशियंस हैं इनके हाथ में जमुना जी को टर्न कर दिया गया है, बांध डालकर पूरा 100% पानी जो है वो हरियाणा पंजाब राज्य में घूम रहा है, और इंडस्ट्री जहां पर वो जो नहीं चाहिए जीवन के लिए ऐसे औजार बना रहे हैं इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए इसका शुद्ध जल इस्तेमाल किया जा रहा है, और कुछ जल जो है वो खेती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन उसके आगे जो लोग जमुना जी के जल पर निर्भर रहा करते थे, क्योंकि उस वहां पर वर्षा नहीं होती, बॉम्बे में तो जरूरत से अधिक वर्षा होती है, बाढ़ तूफान आता है, वहां पर वर्षा नहीं होती है, वहां पर नदियों के जल पर लोगों का जीवन चलता है, और कई लोगों के खेती, कई लोगों का भोजन, अस्तित्व जो है, चाहे वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, हर धर्म के लोग ये मानते हैं कि जमुना जी के जल पर ही हमारा निर्भर होता है, हमारा गेहूं सरसों जो है वो इसी जल पे आता है। तो वर्षा भी नहीं हो रही है, हमारे यहाँ 4 महीने होते हैं तो हमारे 15 दिन वर्षा होती है, वो भी धुआंधार तूफान की तरह होती है और सारे खेत नष्ट कर देते हैं। ऐसी अवस्था में जमुना जी भी नहीं बह रही है तो लोग खाएंगे क्या? वो तो भोजन की बात हुई, लेकिन दिव्य लीलाओं के स्तर पर जो है स्थिति क्या है, कि जमुना जी नष्ट हुई तो ब्रज का अस्तित्व क्या रहेगा फिर हमारे लिए। तो इस जमुना जी को पुनः ब्रज में प्रकट करने के लिए 1 मार्च से, आज 3 मार्च है, 1 मार्च से लाखों ब्रजवासी और लाखों अलग लोग जो अलग अलग संप्रदाय के हैं एकत्र होकर, एक होकर, एकजुट होकर वृंदावन से अभी निकले हुए हैं और मार्च करेंगे। 15 किलोमीटर चलेंगे और एक पड़ाव में रहेंगे रात को, फिर 15 किलोमीटर चलेंगे। 150 किलोमीटर का जो अंतर है वो 10 दिन में वो कवर करेंगे और 10 मार्च के दिन ये सब लोग पहुंचेंगे संसद के पास में। वहां पर 5 लाख लोगों को इकट्ठा होने का आशा है। ये सब कौन लोग हैं? जो सब जमुना को भूल चुके थे पहले, अभी जमुना जी की समस्या है इसलिए अपना अपना मतभेद सब भूलकर सब संप्रदाय एकत्र हो गए हैं। हाँ, ये अखाड़ा वाले, वो अखाड़ा वाले, ये महामंडलेश्वर, वो महामंडलेश्वर, पुष्टि मार्गी, निम्बार्की, गौड़िया, हरे कृष्णा, सारे एकत्र हो गए हैं जमुना जी के लिए। यानी कि जमुना जी जो है अपने कारण से सबको इकट्ठा कर रही है। हाँ, जो लोग कभी शायद एक दूसरे को नहीं मिलेंगे, कुछ काम ही नहीं है, अपना अपना संप्रदाय का प्रचार हो रहा है तो मिलने की जरूरत नहीं है, वो जमुना जी के बहाने, क्योंकि जमुना जी सबकी है, वो निम्बार्कियों की भी है, गौड़ियों की भी है, हरे कृष्णा की भी है और पुष्टि मार्ग की भी है और हिंदुओं की भी है, मुसलमान की भी है, सब लोगों की है। वो जमुना जी का कोई संप्रदाय नहीं है जमुना जी जो है वो सबके संप्रदाय में है, अलग अलग प्रकार से उसको पूजते हैं। सब इकट्ठा हो गए अपने अपने मतभेदों को छोड़कर। एक जय गुरुदेव बाबा है, उन्होंने इन 6 लाख लोगों का रोज का भोजन का इंतजाम कर लिया, 20 करोड़ रुपए दान दे दिया, और दिन रात भोजन करेंगे, आप प्रसाद खाओ और चलो मार्च में चलते रहो आंदोलन में। अभी हम लोग यहां बैठे हैं, हमको भी जमुना जी में श्रद्धा है, हम जानते हैं। अरे भगवान आए और सबसे पहले अभी कुछ घंटे नहीं हुए, कुछ मिनट हो गए जन्म होकर, तो जमुना जी में उन्होंने छलांग लगाई है ना, असुदेव के टुकड़ी से गए कि नहीं वो जमुना जी में, सबसे पहले जमुना जी में स्नान किया उन्होंने, जमुना जी को दिखाया कि मैं बहुत प्रेम करता हूं आपके ऊपर। और जमुना जी का जल जो है उसी समय से भगवान का चरणामृत बना और उसके आगे जाकर भगवान ने अनंत बार उसमें छलांग लगाई, अनंत बार उसमें गेम खेली, अनंत बार उसने लीला किया, कालिया का दमन किया, क्या नहीं किया उन्होंने। जमुना जी को इतना सानिध्य दिया उन्होंने, यहां तक उससे विवाह किया पंचम पत्नी के रूप में, पटरानियों में से पांचवी पत्नी, ब्रजवासी पत्नी भगवान की जमुना देवी है, एक ही पत्नी भगवान की जब ब्रजवासी है वो जमुना देवी है। हाँ, इतना महत्व है जमुना जी का, भगवान ने स्वयं दिया उसको इतना महत्व, क्योंकि गौलोक धाम से, जब गौलोक धाम में राधा और कृष्णा और गोपियों ने रास लीला किया पहली बार, तो उनके शरीर से द्रव निकला जिसको हम यहां पर विकृत रूप में पसीना कहते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं, लेकिन पसीना नहीं, वो उसको दिव्य श्वेत कहते हैं। वो दिव्य श्वेत जब प्रकट हुआ सभी गोपियों का, राधा रानी का, कृष्ण का, एकत्र होकर बड़ा जलाशय बना। राधा रानी उस जलाशय को देखकर बड़ी प्रसन्न हो गई, कितना सुंदर जलाशय है, इसको नदी का स्वरूप दिया जाए भगवान। तब भगवान ने उसको जमुना नदी बना दिया और जमुना नदी का वहां पर अवतरण हुआ। जमुना नदी, जमुना देवी गौलोक धाम में अवतरित हुई इस दिव्य लीला के माध्यम से। फिर भगवान की इच्छा से उसको पृथ्वी पर भेजा गया सूर्य की और उषा देवी की पुत्री के रूप में। पहले पुत्र यमराज हुए, सूर्यदेव ने कहा कि इसके भय से सब लोग व्याकुल होंगे क्योंकि तुम भयभीत हो गई थी मुझे मिलने के समय, तो पुत्र होगा उससे सब भयभीत होंगे। फिर तो अगली बार बड़े शांत चित्त से संग हुआ, उन्होंने कहा अभी कन्या होगी और इस कन्या नदी के रूप में होगी और ये कन्या के नदी के रूप, नदी के जल में जो भी स्नान करेगा वो पहले वाले बेटे के भय से मुक्त हो जाएगा। वरदान दिया, कितनी पवित्र है जमुना देवी, कितनी दयालु कृपालु है जमुना देवी, यमराज के भय तक को नष्ट कर देती है वो, इसलिए उसका नाम यमी है, यमुना। तो वो जमुना जी के वापस लाने के लिए, ब्रज का गौरव पुनः प्रस्थापित करने के लिए, ब्रज में जमुना जल लाने के लिए और हम और आप सबके लिए आचमन करने के लिए, पूजा करने के लिए, स्नान करने के लिए ये दिव्य जल उपलब्ध है। क्योंकि जमुना जी में स्नान करने से न केवल पाप नष्ट होते हैं लेकिन भक्ति का दीपक भी हृदय में जलता है। बाकी जगह पर जब जमुना जी बहती है तो वो केवल पाप को नष्ट कर देती है, लेकिन जब वो ब्रज में प्रवेश करती है तो पाप के नष्ट करने के साथ में वो हृदय में प्रेम का दीपक भी जलाती है। जब ब्रज के अंदर कोई जमुना जी को केवल निहारता है, केवल देखता है जमुना जी को, तो उसके हृदय में केवल निहारने से ही प्रेम का दीपक जलने लगता है। ऐसी जमुना जी की महिमा है। चैतन्य महाप्रभु भी जमुना जी में स्नान किए हुए, केवल कृष्ण ही नहीं, और चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गोस्वामी जी, उन्होंने भी जमुना जी के किनारे लीला किया है। भगवान के अंतर्दान होने के बाद में, गौरांग महाप्रभु के अंतर्दान होने के बाद में भी जमुना जी में संतों की अनंत लीलाएं हैं। वो जमुना जी हमको चाहिए, वी वॉन्ट। हम लोग यहां बैठ के क्या कर सकते हैं, हम लोग वहां नहीं जा पा रहे हैं। तो ये विनती की गई है कि जहां पर भी हम हैं, हमको उन लोगों को सपोर्ट के रूप में, सहयोग के रूप में, उनका हौसला दिव्य रूप में बढ़ाने के लिए हमको यहां पर कीर्तन करना चाहिए, हमको यहां पर जप करना चाहिए। अगर आप 16 कर रहे हैं तो आप 2-4 एक्स्ट्रा करना चाहिए। ठाकुर जी से प्रार्थना करनी चाहिए, राधा रानी से, वीरधारी भगवान से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करना चाहिए। क्या आप क्या नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन वो हमारे हृदय की तड़प कितनी तेज है वो उसका परीक्षा कर रहे हैं कि हम कितना चाहते हैं बंबई में बैठकर कि जमुना जी वहां प्रकट हो जाए। ये हमारी हृदय की जो कशिश है वो कितनी तेज है उसको देख रहे हैं। तो आप सब लोगों को मैं विनती करता हूं, हम लोग तो वहां जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप सब लोगों को विनती करता हूं हृदय से, आप सब लोग कृष्ण भक्त हो, मैं जानता हूं कि आप सब लोगों को कृष्ण पर श्रद्धा है, जमुना जी में श्रद्धा है, वृंदावन में श्रद्धा है, गिरिराज गोवर्धन में श्रद्धा है, कृष्ण लीला में श्रद्धा है, कृष्ण नाम में श्रद्धा है। केवल हमारी भावनाएं एक दिशा में जोड़ने की जरूरत है। वी हैव टू गैदर अवर फीलिंग्स एंड ऑफर देम टू कृष्ण। हम चाहते हैं कि आपकी प्रिय नदी यमुना जी प्रकट हो जाए फिर दोबारा ब्रज में, और हमारी न केवल हमारी पीढ़ी लेकिन आने वाली कई पीढ़ियां, हमारे बालकों के बालकों के बालक भी वहां जाकर यमुना जी का दर्शन कर सकें, आचमन कर सकें, उसका दिव्य लाभ ले सकें, ये हमारी हृदय की इच्छा है। नहीं तो हम क्या कहेंगे, आपको लेके जाएंगे यात्रा के लिए, बताएंगे अरे भाई और बहनों यहां पर यमुना जी बहा करती थी, अभी यहां पर 5-स्टार मॉल बन गया है, ऐसे बताएंगे ना, और क्या बताएंगे। हो सकता है अगर हम लोग यमुना जी वापस नहीं लाएंगे तो वो जगह जो है खाली उस पर प्लॉट बिकेंगे, बढ़िया बढ़िया मॉल बनेंगे और लोग भौतिक आनंदों का भोग करेंगे वहां पर। ऐसे हुआ भी है, कई स्थान लुप्त हो रहे हैं, वहां पर जगह पर प्लॉट बनवा कर उसको बेच रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, रियल्टी का इंडस्ट्री बढ़ रहा है। हमको नहीं चाहिए वो सब, भगवान का धाम चाहिए हमको, जो हमारे लिए तारक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का जो कष्ट है उसको तारने के लिए भगवान का धाम चाहिए हमें, जो किताबों में रह जाएगा वो धाम, वो हमारे प्रत्यक्ष रूप में अवेलेबल है, क्यों ना उसको हम बचाएं, क्यों ना उसको, उसको क्या बचा सकता है, उसको केवल भक्तों की भावना बचा सकती है। गवर्नमेंट की पावर तो एक जगह पर है, धन दौलत दूसरी जगह पर है, लेकिन भक्तों की जो दिव्य भावना है, प्रेम भावना है, वही उसको बचा सकती है, वही उसको दोबारा जागरूक कर सकती है। इसलिए हम साफ सबसे विनती करते हैं, चाहे मंदिर में हो, राधा गोपीनाथ मंदिर में 12 घंटे का कीर्तन हुआ, भक्ति विहार तो हॉस्पिटल में रोज शाम को 7-9 कीर्तन हो रहा है, परसों दोपहर को भी 2-3 घंटा कीर्तन किया, 10 तारीख को जब ये सब लोग वहां पहुंचेंगे तब आपके सबसे अधिक सपोर्ट की जरूरत है। यहां ही बैठ के, हाँ जाने की जा सकते हैं, जाना चाहिए, अगर नहीं जा सकते हैं तो यहीं बैठकर 10 तारीख को आप सब लोग प्रार्थना कीजिए, शायद वहां पर मुठभेड़ हो सकती है, लाठीचार्ज हो सकता है, गवर्नमेंट कुछ तकनीक अपना सकती है, टीयर गैस अश्रु धूर फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोगों को भगाने के लिए। उस समय हम सबकी भावनाओं की आवश्यकता है, हम सबकी श्रद्धा की कसौटी है। 10 तारीख को 6-8 भक्ति विनोद हॉस्पिटल में सब लोग जप करेंगे, आप लोग यहाँ जप करेंगे, जमुना जी का गौरव करेंगे और 9-10 संकीर्तन भी करेंगे। आप लोग भी कीजिए, अपने घरों में कीजिए, मंदिरों में कीजिए, अपने संस्था में कीजिए, सोसाइटी में कीजिए, जहां पर भी आप हो, और कहीं जगह नहीं तब हृदय में कीजिए, हाँ लेकिन कीजिए जरूर। भगवान को ये बताइए कि हमें आपकी जमुना जी चाहिए, आपका धाम परिपूर्ण हो, अपूर्ण ना हो भौतिक दृष्टि से। इसलिए मैं आपको विनती करता हूँ, क्योंकि सभी लीलाओं का अभी 2-3 साल वर्णन चलेगा दशम स्कंद का, और बाय द वे आपको पता होना चाहिए ये सब लीलाओं का जो आधारभूत है वो जमुना जी और गोवर्धन है। प्लीज अंडरस्टैंड, गोवर्धन तो अभी विराजमान है, उसको कोई कष्ट नहीं है, जमुना जी नष्ट हो रही है। हाँ, इसलिए आप सब लोगों को विनती है कि भगवान की लीला में, लीला को हमारे हृदय में और ब्रजधाम में पुनः हमारे आनंद के लिए, हमारे अनुभूति के लिए प्रकट कराने के लिए आप सब लोग प्रार्थना कीजिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। उन सब लोगों ने जो वहां पर लाखों लोग इकट्ठा हो चुके हैं, उस अपना सब घरदार छोड़कर 10 दिन के लिए सब कुछ छोड़कर वो चल रहे हैं, धूप में पैदल चल रहे हैं और जमुना जी के लिए रो रहे हैं। वो केवल आपको एक ही विनती कर रहे हैं, उनका संदेश आया है कि जो लोग नहीं आ पा रहे हैं कोई बात नहीं है, आप लोग जहां पर भी है वहीं से पुकारिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का, कोई क्वेश्चन कमेंट टिप्पणी? श्री कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, यमुना मई की, गिरिराज गोवर्धन की, श्री राधा गिरिधारी भगवान की। धन्यवाद सबका, हरे कृष्ण।
आपने किया?